الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قرآن مجید کے اندر حضرت مریم کا واقعہ ان مکہ کے دشمنوں کو سنانے کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم آ رہا ہے. اصل واقعہ تو اللہ تعالی قرآن میں بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان بابرکت سے مکہ کے دشمنوں کو، کافروں کو یہ واقعات سناتے اور سنا کر کے ان کو اللہ کی قدرت پر یقین کر کے توحید کا اقرار کرنے کی دعوت دیتے ہیں. آپ ذکر کیجئے کتاب قرآن میں حضرت مریم کا. مریم، ان کے والد کا نام ہے عمران، مریم بنت عمران. ان کی والدہ کا نام ہے حنہ، حنہ بنت فاقوزہ. کل جیسا بتایا گیا تھا یہ دونوں بہنیں ہیں، حضرت حنہ اور حضرت عیسیٰ. دونوں کے والد کا نام ہے فاقوزہ، حنہ بنت فاقوزہ، عیسیٰ بنت فاقوزہ. حضرت حنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت عمران سے. حضرت عمران یہ بھی بیت المقدس کے اماموں میں سے ایک جلیل القدر امام، ان کی یہ بیٹی ہوتی ہے حضرت مریم. اور سورہ آل عمران کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے. قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ایک دن حضرت حنہ اپنے گھر کے باڑے میں نکلی ہوئی تھی، ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے. تو حضرت حنہ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر دعا کی، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. پھر جب حمل کا پتہ چلا تو انہوں نے منت مان لی کہ اللہ میرے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. کیونکہ اس زمانے میں عام رواج تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے. لیکن جب ولادت ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو لڑکی ہے، وقف لڑکوں کو کرتے ہیں، یہ تو لڑکی ہے. لہذا ان کی والدہ بہت حیرت میں پڑی اور اس حال کے اندر بھی اپنی بیٹی کو لے کر کے آئی، مسجد اقصی کے ائمہ سے بات چیت کی. تو انہوں نے ان کی منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم کو بھی اپنے پاس لے لیا. اس زمانے کے اندر 29-30 کے قریب ائمہ تھے مسجد کے، تو ان کے درمیان ان کی پرورش کے مسئلے میں اختلاف ہوا. ہر ایک امام کی چاہت یہ ہے کہ میں پرورش کروں، کیونکہ حضرت عمران کا تو انتقال ہو گیا، یہ ان کے استاد کی بیٹی ہے، اسی لیے ہر ایک اس کی پرورش کو اپنی سعادت سمجھ کر کے چھوٹی بچی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے. بلاخر قرآن اندازی ہوئی، اس میں حضرت زکریہ کا نام نکلا، وہ کامیاب ہو گئے. حضرت مریم حضرت زکریہ کے پاس بڑی ہوئی اور جو ہے پھر وہاں عبادت کے اندر رات دن اپنے آپ کو مشغول رکھتی تھی. ان کی خالہ حضرت عیسیٰ کا مکان وہی مسجد کے قریب میں تھا. رات کے وقت پر اپنی خالہ جان کے پاس چلی جاتی، دن بھر مسجد میں رہتی. اسی طرح حیض کا خون آتا تب بھی وہ مسجد سے دور چلی جاتی خالہ جان کے پاس، और हैज पूरा होने के बाद जब साफ हो जाए तब दोबारा मस्जिद के अंदर आकर के उसका जो मखसूस हुजरा था वहाँ आकर के इबादत में मशगूल हो जाती थी। उसी जमाने का ये वाकिया है कि जिन तबजत मिन अहलिहा, अपने घर वालों से जरा दूर हट कर के चली गई मकानन शरफिया मशरिकी जानिब में, बैतुल मुकद्दस की जानिब मशरिक के अंदर क्यों गई? हैज आया तो हैज का गुसल करने के लिए वहाँ पर चली गई। बाद रिवायतों से पता चलता है कि सर के अंदर उसको जुई हुई वगैरह साफ करनी थी, तेल लगा करके सर को ठीक करना था। औरतों के लिए भी एक मुस्तकिल काम होता है कि वो तेल लगावे, फिर उसके अंदर लिखिया मारे, फिर उसने कंगई मारे, फिर उसके चोटले बनावे, एक मुस्तकिल उनका एक मशगला होता है। तो हजरत मरियम इस तरह के कामकाज के वास्ते जरा बैतुल मक़दिस से दूर चली गई और बाद रिवायत से पता चलता है कि इस मर्तबा उनको अव्वल हैज आया था। बाद रिवायत से पता चलता है पहले दो मर्तबा हैज आ चुका था और उस वक्त हजरत मरियम की उम्र एक कौल में 13 साल दूसरे कौल में 15 साल की थी। वहाँ जाकर के जानिब मशरिक में इत्मीनान के साथ जाकर के बैठ गई। अरसलना इलैहा रूहना, हजरत मरियम वहाँ जंगल बयाबान के अंदर अकेली जानिब मशरिक में अल्लाह ताला ने उनके पास हजरत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल को आयत करीमा में रूह से ताबीर किया गया, इसलिए कि जिब्राइल ऐसी वही लेकर के आते थे जिससे इंसानों के दिलों में रूह पड़ती थी, मरे हुए दिल जिंदा हो जाते थे और मुर्दा दीन जिंदा हो जाते थे। इसी तरीके से जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वहाँ भी लफ्ज रूह इस्तेमाल होता है कि रूही मेरी रूह फिदा का आप पर फिदा है, तो ये मोहब्बत से भी किनाया है। गोया हजरत जिब्राइल अल्लाह ताला के महबूब हैं, लाडले और प्यारे हैं। तो फारसलना इलैहा रूहना, हमने हमारी रूह हजरत जिब्राइल अमीन को उनके पास भेजा और हजरत जिब्राइल उनके पास पहुँचे जहाँ हजरत मरियम बैठी हुई थी जंगल बयाबान के अंदर। ऐसे आए फतमसला बशरन सविया, एक कामिल मुकम्मल मर्द की शक्ल के अंदर हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के पास पहुँचे, वहाँ पर हाजिर हुए एक मुकम्मल मर्द की शक्ल के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत जिब्राइल कामिल नौजवान खूबसूरत की शक्ल के अंदर क्यों गए? मुफस्सिरीन ने उसके मुताद्दद एहतमालात जिक्र किए। नंबर एक, मलाइका आम तौर पर जब किसी बशर की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उम्दा शक्ल को इख्तियार करते हैं। जैसे हजरत जिब्राइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके तशरीफ लाते तो हजरत दहिया इब्ने खलीफा कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में तशरीफ लाते थे अच्छी शक्ल के अंदर। तो कामिल नौजवान, खूबसूरत नौजवान, तंदुरुस्त नौजवान उस शक्ल में आए क्योंकि मलाइका अच्छी शक्ल को अपनाते हैं। नंबर दो, हजरत जिब्राइल का कामिल मर्द की शक्ल को इख्तियार करना ये इस वजह से था कि हजरत मरियम की इफ्फत का इम्तिहान अल्लाह ताला ले रहे थे कि मरियम भी नौजवान लड़की, जिब्राइल भी एक हैंडसम नौजवान की शक्ल में जावे और दोनों जंगल में तन्हाई के अंदर है तो फिर दोनों के दरमियान में क्या होता है इसकी इफ्फत और पाक दामनी का अल्लाह ताला को इम्तिहान लेना था। नंबर 3, मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि इंसान के बस में है ही नहीं कि वो मलाइका को असली शक्ल सूरत के अंदर देख ले। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल को असली शक्ल में देखा तो आप भी बेहोश होकर गिर गए, तो मरियम जैसी एक भोली भाली कमजोर औरत कहाँ जिब्राइल को असली शक्ल में देख पाती थी। इसीलिए एक मर्द की शक्ल के अंदर हजरत जिब्राइल वहाँ पर पहुँचे। हजरत मरियम उस वक्त के ऊपर गुसल खाने के अंदर थी, गुसल से फारिग हो चुकी थी, कपड़े पहन चुकी थी और बिल्कुल तैयार बाहर निकलने के वास्ते, और हजरत जिब्राइल वहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ मुफस्सिर ने कैद निकाली बाद लुत्फिया किया बहा कि हजरत मरियम अपने कपड़े पहन चुकी उसके बाद जिब्राइल पहुँचे। ये इन्होंने तफसीर इसलिए निकाली कि रिवायतों से पता चलता है जब औरत खुले सर होती है तो वहाँ फरिश्ते नहीं आया करते, तो जब खुले सर औरत के पास फरिश्ते नहीं आया करते तो एक औरत गुसल खाने के अंदर मुकम्मल बरहना है, वहाँ कैसे अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल पहुँच गए। इसलिए इसका ये जवाब निकाला कि मरियम गुसल के बाद जब कपड़े पहन चुकी तब हजरत जिब्राइल आए, इसीलिए आने के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट और माने नहीं था। बशरन सविया। अब ये हजरत मरियम की इफ्फत और पाक दामनी की बात कि जब जिब्राइल को तन्हाई में नौजवान की शक्ल में आते हुए देखा तो पहचाना नहीं और फौरन आवाज देने लगी, قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا। मरियम बोली मैं रहमान की हिफाजत चाहती हूँ तुझसे, तू मेरे पास मत आ, इन कुंत तकिया अगर तू परहेजगार है तो, यानी तू रुक जा, मैं तेरी मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ, चुनांचे तेरा तकवा तुझे मेरे करीब आने से रोकना चाहिए, तेरे अंदर तकवा है, तू तकवा वाला नौजवान है, मेरे पास मत आ, दूर रहे, तू अजनबी मैं भी अजनबी, हम दोनों जवान जंगल में तन्हाई, इसलिए तू मेरे करीब के अंदर ना आ, तेरा तकवा मुझे तुझे मेरे पास आने से रोकना चाहिए, ये कहकर के आवाज लगा। अब चूँकि हजरत मरियम ने किसी रहमान का लफ्ज बोला तो अल्लाह ताला के मुबारक नाम की तज़ीम में हजरत जिब्राइल इस जुमले को सुन करके फौरन थोड़ा पीछे हट गए, यानी उस वक्त उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया, कहा अल्लाह के नाम से ये कह रही है तो अल्लाह के नाम की अजमत का तकाजा ये है कि मैं थोड़ा पीछे हट जाऊँ, फौरन पीछे रुक गए और पीछे की तरफ हट गए। बाद मुफस्सिरीन ने इन कुंत तकिया का माना क्या बयान किया कि अगर तू तकवा वाला हो तो भी मेरे पास मत आना, तो अगर लफड़ेबाज हो तो बदन जे औला मत आना, इन कुंत तकिया तू कितना ही बड़ा मुत्तकी पारसा हो तो अभी तू मेरे करीब के अंदर मत आना, इसलिए कि ये खलवत और ये उन्फान शबाब और ये दोनों के अंदर जो है दूसरे की कशिश ये ऐसी चीज है कि वो तकवा के खिरमन को ताक-ताक कर देवे, हार के खत्म कर देवे। इसलिए अगर तू कितना ही बड़ा मुत्तकी हो तो अभी तू मेरे पास में मत आना, तू मुझसे दूर रहना, इन कुंत तकिया। इसने सबक दे दिया कि तकवा का मतलब ये होता है कि आदमी शरीयत के अहकाम से बालातर हो जाता है। तकवा का तकाज़ा तो ये कि शरीयत पर और ज्यादा कामिल अमल करे। आज बहुत से बापू लोग का हमारे अंदर में तो कोई मेल है ही नहीं, एकदम साफ हमारा रीजन बेचारी बीमार है आई है तो फिर क्या करे, इसीलिए इलाज के लिए करीब में बुलाना पड़ता है। फिर धीमे धीमे उसी में से फितने चलते। एक बापू ने भी पिस्तान में से जिन्नात निकाला, चंद दिन पहले किस्सा पेश आया। फिर वो बापू एक लड़की को लेके भाग गया। बापू ने एक लड़की से शादी कर डाली। ऐसे किस्से होते ही रहते रात दिन, और जीना तो आम है इस तरह के बेहतियाती वाले आमिलों के अंदर। और ज्यादातर आप मुशाहदा करते हैं, औरतें ही ज्यादा आती है। जहाँ भी इस तरह के बापू आमिल लोग बाबा लोग होते हैं, वहाँ ज्यादा औरतें ही आती है। बिल्कुल इनका तफैया। और यही हाल बात पीरों का भी हो गया है। तो हम तो उनके रूहानी बाप पीर यानी क्या। तभी एक बहुत बड़े पीर साहब की एक मुरीदन से शादी हो गई। बिल्कुल इनका तफैया कि अगर तू तकवा वाला है तो अभी तू मेरे करीब के अंदर मत आना। तब जाकर के हजरत जिब्राइल ने सोचा कि मरियम तो बड़ी इफ्फत वाली है, पाक दामनी वाली है, तो अब उन्होंने तारुफ कराया। क्या قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا। जिब्राइल ने कहा मरियम घबराओ मत, मैं कोई अजनबी नौजवान मर्द इंसान नहीं हूँ, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ एक काफिद हूँ, मैं फरिश्ता हूँ अल्लाह का भेजा हुआ। और फरिश्तों में मुजक्कर मोनस तस्कीर तानीस मर्द औरत कोई चीज होती नहीं है, वो एक मुस्तकिल मखलूक है जो तस्कीर और तानीस से पाक है। लिया हबलकी गुलामन ज़किया, ताकि तेरे अल्लाह तुझे पाकीजा औलाद देवे। और जिन किरातों में मुतकल्लिम का सिगा है ये अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझको पाकीजा बच्चा दूं। क्योंकि हजरत जिब्राइल की फूक ये सबब और जरिया बनी, इसीलिए उन्होंने कहा ये अहब लकी गुलामन ज़किया, वो बच्चे की पैदाइश के लिए जरिया बने, इसीलिए मुतकल्लिम का सिगा। और ये गाइब वाली किरात के अंदर सीधा अल्लाह ताला की तरफ मर्जा लौटेगा, ताकि तुझे तेरे अल्लाह एक पाकीजा बच्चा अता करे। पाकीजा का मतलब क्या, वो बच्चा गुनाहों से पाक रहेगा। क्योंकि इशारा हो गया ये बच्चा मुस्तकबिल में अल्लाह का नबी बनेगा, इसीलिए गोया कि वो गुनाहों से पाक रहेगा। और दूसरी बात क्या कि आम तौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो शैतान आकर उसकी कमर में उंगली मारता है। तेरे बच्चे को शैतान उंगली मार नहीं सकेगा, शैतान की उंगली और उसकी नापाकी से वो बच्चा पाक रहेगा। हदीस में आता है कि वो बच्चा भी पैदा होता है, शैतान आके उसकी कमर में उंगली मारता है, उसके दिल को टटोलता है, इसीलिए बच्चे को रोना आता है। उसी शैतानी असरात को जाहिर करने के लिए अजान और इकामत कही जाती है। क्योंकि मिश्कात में आप रिवायत पढ़ोगे कि अजान की आवाज से शैतान भागता है, खारिज करते हुए भागता है, तो उसके असरात को जाहिर करने के वास्ते होता है। इल्ला मरियम वलीदुहु, मगर हजरत मरियम और उनके बेटे को विलादत के वक्त शैतान उंगली मार नहीं सका, उससे अल्लाह ताला ने इनको पाक रखा। ये हदीस में इस्तिस्ना भी मौजूद है, लिया हब लकी गुलामन ज़किया, ताकि अल्लाह ताला तुझे पाकीजा बच्चा अता करे। अब अजीब बात सुनी मरियम ने, फिर तो जंगल बयाबान, आने वाला अल्लाह का फरिश्ता, आज तक शादी नहीं हुई, किसी मर्द ने हाथ लगाया नहीं, अकीफा पाक दामन एक सालिया औरत, और एकदम अचंभे की बात सुने कि अल्लाह तुझे बेटा देना चाहते हैं, तो कैसी अजीब हैरानी हो गई। कालत अन्ना यकून ली गुलाम, मरियम बोली मुझे बेटा कैसे होगा, कहाँ से होगा। वलम यमससनी बशर, आज तक किसी मर्द ने शादी करके मुझे टच तक नहीं किया, मुझे हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर मुझे कैसे बच्चा होगा। हाथ नहीं लगाया तो आगे की कोई बात तो हुई नहीं। वलम को बहिया, और मैं कोई जिनाकार भी नहीं हूँ, कि मैंने किसी पराए मर्द के साथ कोई गलत नाजायज ताल्लुक कायम किया हो। तो जिब्राइल ने कहा काल कज़ालिक, बात ऐसी है कि बच्चा तुझे अल्लाह देने ही वाले हैं बगैर बाप के बगैर मर्द के, ये तो होना ही होना है, चाहे तुझे ताज्जुब हो के ना हो। काल रब्बु की हुआ अलैया हैन, तेरे रब ने कहा कि ये बात जो है मेरे लिए बहुत आसान है, यानी बगैर मर्द के बच्चा पैदा करना ये चीज मेरे लिए बहुत आसान है। पहले देखो कितने इंसान कितनी मखलूकात ऐसी है नहीं थी और हमने उसको वजूद बख्शा, तो अब तेरे में से बच्चा पैदा करना तो हमारे लिए बहुत आसान। वली नजालहु आयतल लिन्ना, और तेरे बच्चे को हम कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए हमारी कुदरत की निशानी बनाएंगे। देखो अल्लाह ताला का जो निजाम तखलीक है उसको हजरत मुफस्सिरीन ने अनवा में तकसीम किया है। इसने मर्द भी नहीं औरत भी नहीं, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नंबर दो, जिसमें मर्द है औरत नहीं, जैसे हजरत हव्वा। हजरत आदम से अल्लाह ने उनको बनाया, कोई औरत का उसमें दखल नहीं। नंबर तीन, मर्द औरत दोनों, जैसे आम इंसान। और नंबर चार, सिर्फ औरत है मर्द नहीं है, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो कहा उस बच्चे को हम इंसानों के लिए हमारी कुदरत की एक निशानी बनाएंगे। और बाज़ रात ने आयत लिन्नास का मतलब बयान किया, तज़कीरन लिकुदरतिल्लाहि तआला, वो अल्लाह की कुदरत को याद दिलाने का जरिया बनेगा। कि देखो किसी अल्लाह ताला की अजीब गरीब कुदरत के बगैर मर्द के भी अल्लाह ने इस बच्चे को पैदा फरमा दिया। वली नजअलहु आयतन लिन्ना व रहमतन मिन्ना, और ये हमारी तरफ से रहमत ही रहमत होगा, मरियम के लिए भी रहमत, उस बच्चे पर ईमान लाने वालों के लिए भी रहमत, और वो बच्चा जब भी दुनिया में रहेगा तब तब रहमत। वकान अमरन मकदिया, ये चीज अल्लाह ताला की यहाँ कि तुझे बच्चा मिल के रहेगा, फैसला है अल्लाह सुबहानहू व ताला का। बस जब ये बातचीत हो गई तो जिब्राइल ने हजरते मरियम के गरेबान में, एक रिवायत में है आस्तीन में, एक रिवायत में है मुंह में फूक मार दी, जिसकी वजह से हजरत मरियम हामिला हो गई। बाद मुफस्सिरीन ने साफ साफ नकल किया है कि हजरत मरियम ने हजरत जिब्राइल ने दूर से फूक मारी, हालांकि फरिश्ते करीब आके फूक नहीं मारी, दूर से फूक मार दी। अब क्या इजाजत बाकियों को तो वो करीब बुला के फूक मारे, जब हजरत जिब्राइल जैसे मासूम फरिश्ते दूर से फूक मार देवे, तो दूर से उन्होंने फूक मार दी। हामल हजरत मरियम हामिला हो गई। अब जो हामिला हो गई तो जैसे जैसे लोगों को हमल का पता चले तो लोग तान मारे कि मरियम ये मटका बगैर कीमत में फ्री से कहाँ से लाई तो खरीद करके, कि न तो जो है तेरा कोई शोहर है, न क्या हुआ, ये कौन सा तेरा असर हो गया कि जिसके नतीजे के अंदर ये मटका रोजाना बढ़ ही बढ़ रहा है। इसीलिए हजरत मरियम ने सोचा कि अब मजमे के अंदर रहना मुनासिब नहीं, लिहाजा दूर एक जगह के ऊपर चली गई। मकानन कफिया, जब हजरत मरियम को हमल हो गया तो अब वो अपने हमल को लिए लिए दूर एक जगह के ऊपर चली गई। चुनांचे मस्जिद अक्सा से तकरीबन 8 मील के फासले के ऊपर एक वादी है जिसका नाम बैतुल लहम है, जिसको बैतुल हम कहते हैं, उस जगह के ऊपर हजरत मरियम चली गई। फहमलत हुफन तबजत बिही मकानन खफिया, ये शर्म के मारे ताकि लोग ताना न दे, इसलिए वहाँ पर जो है वो चली गई। ये مسجد اقصیٰ کی واقعیت جانب مشرق کے اندر ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت وہاں ہوئی, اس لیے عیسائی لوگ جانب مشرق میں رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, ان کا قبلہ جانب مشرق ہے. اور اس وقت کے اوپر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی جانب مشرق میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک پہاڑ کے اوپر یہ جگہ واقع ہے. اب تو یروشلم اتنا بڑا شہر بن گیا کہ پہلے وہ مکانن قفیہ تھا, اب تو یہ جگہ پوری یروشلم کے اندر آ گئی ہے, بیچ میں آ گئی ہے, شہر اتنا وسیع ہو گیا ہے. اور وہاں پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اوپر بڑے بڑے چرچ بنے ہوئے ہیں. اس چرچ کو والی اس پوری جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے, وہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اور اسی جگہ حضرت مریم چلی گئی تھی. اس کے قریب کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے, اسی لیے وہاں مسجد کا نام مسجد عمر رکھا گیا ہے. تو پورا علاقہ ایسے تو مسلمانوں کا ہے لیکن وہاں چرچ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے عیسائی آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت, خصوصاً 25 دسمبر کو تو وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے, حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے. میں نے وہاں عرب حضرات سے پوچھا کہ آگے جو قرآن میں ساری تفصیلات ہے کہ آجال مقابلہ جز ہند نخلا تو کھجور کا تنا ہونا, کہنے اب تو کوئی چیز نہیں ہے, چرچ ہونے کی وجہ سے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی. ہم نے وہاں کبار سے اس کو دیکھا, مسجد عمر میں ظہر کی نماز ہم نے پڑھی اور جو ہے وہاں پر نیچے اس چرچ کے تہ خانے کے اندر یہ ولادت کی جگہ ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاها المخاض الى جذع النخلة. درد زیہ شروع ہوا حضرت مریم کو. اب یہ مسئلہ مفسرین کے درمیان کے اندر مختلف سی ہے کہ حضرت مریم کو کتنے دنوں تک حمل رہا. تو ایک روایت یہ ہے کہ ادھر جبرائیل نے پھونک ماری ایک گھڑی, حمل ہوا دوسری گھڑی, ولادت ہوئی تیسری گھڑی, تین گھڑی میں سارے مراحل سے ہو گئے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 7 مہینے تک حمل رہا, بعض کہتے ہیں 8 مہینے تک حمل رہا, بعض کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق 9 مہینے تک حمل رہا. بس جب حمل کی مدت پوری ہوئی اور درد زیہ شروع ہوا, ولادت کا درد, فأجاها المخاض الى جذع النخلة, وہاں ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا, وہاں حضرت مریم چلی گئی. درد زیہ ان کو سوکھے تنے کے پاس لے گئے, وہاں چلی گئی حضرت مریم. کیوں گئی؟ 2 مقصد ہو سکتے. ایک تو یہ ہے کہ اس کھجور کے درخت کے تنے کی آڑ میں بیٹھ جائے کوئی مرد اس کو نہ دیکھے کیونکہ ولادت شروع ہو رہی ہے, اور دوسرا مقصد کا سہارا لگانے کی کوئی چیز مل جائے کیونکہ پورا پہاڑ چکیل علاقہ اسی لیے کھجور کے تنے کے پاس چلی گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کھجوری کا درخت سوکھ چکا تھا, اس کے اوپر پتے نہیں تھے, تو پھل کا تو کوئی سوال ہی نہیں, خالی تنا کھڑا تھا. حضرت مریم جا کر کے اس کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی, آپ کے ٹیک لگانے کی برکت فوراً وہ مرا ہوا درخت ہرا بھرا ہو گیا, اس پر پتے آ گئے, آنند فانند کھجوریں لگ گئی اور کھجور بھی رتب پکی ہوئی آنند فانند ہو گئی. فأجاها المخاض الى جذع النخلة. پھر کیا بولتی ہے؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. ہائے ہائے, میں اس وقت آنے سے پہلے مر جاتی اور بھیلی بسری ہو جاتی, لوگ مجھے بھول گئے ہوتے, بھولی بسری ہو جاتی, میرا تذکرہ بھی دنیا میں سے ختم ہو گیا ہوتا. یہ کیا ہے؟ जब कोई बड़ा टेंशन का मौका आता है ना उलझन का, तब आदमी इस तरह का जुमला बोलता है, लाली चली मिश्र कबल हाजा, ये मौका पेश आया, उससे पहले तो मर गए होते तो अच्छा होता, खुद तो नसीब मन किया, मरे हुए भी बड़ा जमाना गुजर गया होता, लोग हमको भूल गए होते, हमारी यादें भी खत्म गई होती, कितना अच्छा होता ये मौका मुझे पेश नहीं आता। ये हजरत मरियम ने मारे टेंशन के ये जुमला अपनी जुबान से इस्तेमाल किया। इस मौके पर वो अल्लाह ताला का वादा भूल गई। क्या वादा था जो ऊपर गुजरा, केवली नजालहु आयतल लिन्नास व रहमतन मिन्ना, वो वादा भूल गई, क्योंकि उस वक्त के ऊपर गफलत हो गई, हालात की वजह से गफलत हो गई। वो दर्द जी बड़ा खतरनाक दर्द होता है, मौत और हयात में एक फसल एक मंजिल बाकी रहती है, दर्द से इतनी खतरनाक चीज होती है। इसीलिए फरमाया फहमलत उम्मुहु कुरहा वज़अतहु कुरहा, इसीलिए कुरान ने दर्द कुरहन का जिक्र फरमाया। तो बड़ी तकलीफ की वजह से वो अल्लाह ताला के वादे को भूल गई। बाद रिवायत में है कि कुव्वत हाफ़िज़ा की कमजोरी की वजह से भूल गई, के दिन फसदम किया उनके ऊपर तारी हो गया, फिर इन्होंने मौत की तमन्ना की। अब एक सवाल हजरत मुफस्सिरीन खड़ा करते कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मौत की तमन्ना मत करो, फिर मरियम ने मौत की तमन्ना कैसे की, लालैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा। तो नंबर एक जवाब ये दिया जाएगा कि दुनिया का गम के बगैर मर्द और शादी के बच्चा पैदा होगा तो लोग क्या बातें करेंगे। ये दुनिया का गम उसकी वजह से हजरत मरियम पर हाल का गलबा था, और जब किसी हाल का गलबा होता है तो इंसान मिन कुल्लिल वुजूह मुकल्लफ नहीं रहता है, तकलीफ के अंदर मुकल्लफ होने में कुछ कमी आ जाती है गलबे हाल की वजह से, इसलिए उनको माजूर कहा जाएगा। बाद हजरात कहते कि अगर दीन का गम है, दीन के गम का क्या मतलब कि लोग बदनाम करेंगे, बात करेंगे, ओ देखो नहीं मरियम अभी तक शादी भी नहीं हुई, ने बच्चा उसको हो गया, लोग बदनाम करेंगे, और बदनामी की वजह से सबर न कर सके, सबर न कर सके तो गुनाह में मुब्तला हो जाए, तो उस गुनाह से मौत हिफाजत का जरिया बन जाए। इसीलिए हजरत मरियम ने अपनी जुबान से कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसीयम मंसिया। सबसे बेहतर बात जवाब में ये समझ में आती है कि शराए मिन क़ब्लिना की बात है, और क्या जरूरी कि उस जमाने में भी यही कानून हो कि मौत की तमन्ना मत करो। ये तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फरमाया, यही कानून उस उम्मत में भी हो, ये कोई जरूरी नहीं। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसीयम मंसिया। فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا। हजरत मरियम जरा ऊंचाई के ऊपर, वाकईतन बैतुल लहम ऊंचाई के ऊपर है, हजरत जिब्रील नीचे खड़े हुए थे। देखो फरिश्ता होने के बावजूद इस कदर एहतियात कर रहे कि एक औरत को विलादत का वक्त करीब है, मैं करीब के अंदर न खड़ा रहूं। और अब तो लोग मुसलमान अपनी औरतों को जहाँ मर्द डॉक्टर होते वहाँ ले जाते हैं विलादत के वक्त पर, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, इस तरह वहाँ ले जाते हैं मर्द के पास। ये कितनी गलत बात है कि विलादत के लिए कोई औरत डॉक्टर नहीं मिल रही, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मर्द डॉक्टरों के पास लोग ले जाते हैं। हजरत जिब्रील दूर खड़े रहे, नीचे जो वादी का इलाका है, और हजरत मरियम ऊपर बैठी हुई है, जब अपनी जुबान से ऐसी बातें बोल रही है काश के मैं मर जाती भूली बिसरी होती, तो हजरत जिब्राइल ने तसल्ली के लिए नीचे से आवाज लगाई फनादाहा मिन तहतिहा, नीचे की तरफ से हजरत जिब्राइल ने आवाज लगाई अल्लाह तहजनी मरियम घबरा मत, अल्लाह ने तेरे नीचे पानी का एक चश्मा जारी कर दिया है, वहाँ पानी का चश्मा किसी दौर में था, खुश्क हो गया था, हजरत मरियम के लिए अल्लाह ने दोबारा जारी फरमा दिया, उसमें पानी चालू हो गया। बाद मुफस्सिरीन ने सरिया का माना किया है सरदार, कद जाल रब्बुकी तहतकि सरिया, तेरे नीचे यानी फरज में से एक सरदार निकल करके दुनिया में आ रहा है जो इंसानियत का सरदार और पेशवा बनेगा। कद जाल रब्बुकी तहतकि सरिया, तेरे रब ने तेरे नीचे एक नौ सरदार पैदा फरमा दिया। बाज रिवायतों के अंदर है कि फनादा हा के फाइल हजरत जिब्राइल नहीं है बल्कि फाइल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये बाज मुफस्सिरीन की राय है कि हजरत ईसा पैदा हो चुके, निकल चुके माँ के पेट से और दुनिया में आ चुके, तो उन्होंने अपनी माँ के नीचे से आवाज लगाई, क्योंकि बच्चा पैदा होकर के नीचे की तरफ आता है कि अम्मी जान ला तहजनी, घबराओ मत, अल्लाह ने तुम्हारे नीचे एक सरदार जैसा बेटा पैदा फरमा दिया, लोग इल्जाम लगाओ तो घबराना मत, मैं आपकी तरफ से निमट लूंगा, आप चुपचाप रहना, कुछ मत बोलना, जवाब की जिम्मेदारी मेरी है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी वालिदा को तसल्ली दी, कद जाल रब्बु की तहत की सरिया। अब जंगल बयाबान, विलादत का वक्त जिसमें औरत को ठंडक लगती है, गिजाओं की जरूरत पड़ती है, अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतजाम फरमा दिया, जहाँ बैठी थी वही पानी का चश्मा, लिहाजा मिनरल से लबरेज पानी जिसके अंदर कुदरती मासूमियत को ऐसा ताजा बेहतरीन पानी चश्मे का पॉल्यूशन से फ्री वो पीने के लिए वहाँ पर अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमा दिया, और खाने के लिए खजूर का इंतजाम फरमा दिया। फरमाया बारी ताला ने वहुज्जी इलैकी बिजिज़इन नखला, ये खजूर का जो सूखा दरख्त है उसको हिला, उसको हिलाओ, अच्छाकत अलैकी रुतबन जनिया, वो तेरे ऊपर ताजा ताजा पकी पकी खजूरे गिराए, यानी इस पर से ताजा ताजा पक्की पक्की खजूरे गिरेगी। देखो अल्लाह ताला ने हर की आदत चीजें बतलाई, मुर्दार दरख्त का हरा होना, फिर उस पर से खजूर गिरना, सूखे चश्मे में पानी जारी होना, ताकि हजरत मरियम की घबराहट दूर हो, उन पैदा हो और विलादत के वक्त की जरूरियात का इंतजाम भी हो जाए। मुफस्सिरीन ने एक अजीब नुक्ता लिखा कि देखो अल्लाह ताला चाहते हो तो खुद खजूर गिरवा सकते थे, यानी जिस अल्लाह ने मुर्दा को जिंदा किया उस पर खजूरें आ गई तो अल्लाह ताला खुद गिरवा भी सकते थे, लेकिन हजरत मरियम को क्यों हुक्म दिया हिलाओ, वहुजी लेके बिजीजिन नखला, खजूरी हिलाओ तो खजूर गिरेगी। क्या ये दुनिया के इंसानों को सिखलाना है कि ये दारुल असबाब है, यहाँ असबाब किसी न किसी दर्जे में अपनाने पड़ते हैं, असबाब के साथ अल्लाह ने रिश्त को जोड़ा है, तुम बैठे रहो हाथ जोड़ करके कभी अल्लाह गुंजा उतार सकते, लेकिन कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, रोजी को कमाने की कुछ असबाब जराए वसाइल इख्तियार करने पड़ेंगे, इसीलिए उनको कहा कि हिलाओ वहुजी इलैकी बिजिज़इन नखला। आज लोग इसको बहुत बड़ा तवक्कुल समझते हैं, बुजुर्गी समझते हैं, कुछ काम नहीं करने का, निवरे बैठे रहेंगे और जो है पूरे गांव के पत्थर झिकेंगे बैठे बैठे, और जिबत के अलावा कोई धंधा नहीं था, भाई वो तो बस अल्लाह खिलाएंगे, ऐसे थोड़ी ये दुनिया दारुल असबाब है, असबाब अपनाने पड़ते इसमें। वहुजी इलैकी बिजिज़इन नखला, खजूर के तने को हिलाओ, तशाकत अलैकी रुतबन जनिया, पकी खजूर अल्लाह ताला तेरे ऊपर गिराएंगे। उससे मालूम हुआ कि असबाब को अपनाना ये ऐने तवक्कुल है, तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और दूसरी एक अजीब बात भी मुफस्सिरीन ने लिखी है, ये काम आएगी आप लोगों को मुस्तकबिल में, बाजों को अभी, के विलादत के मौके के ऊपर सबसे बेहतरीन गीजा औरत के लिए खजूर है, अगर उससे अच्छी कोई गीजा होती तो अल्लाह सुबहानहु व ताला उसका इंतजाम फरमाते, लेकिन विलादत के मौके के ऊपर अल्लाह ने खजूर का इंतजाम फरमाया, معلوم ہوا کہ ولادت کے لیے سب سے اچھی غذا کھجور ہے. کھجور کا پھاک کھلاؤ, کھجور سوکھی کھلاؤ, کھجور کو دودھ میں اکھار کے کھلاؤ, کھجور کے ایسے ہی کھلاؤ, یہ عورت کی بہترین غذا ہے. اور خون کے لیے بھی مفید ہے اور کمزور کی قوت کے لیے بھی مفید ہے. اسی لیے تازی تازی کھجور کا انتظام ہوا. وقولی فقولی وشرابی, فقولی مریم کھجور کھا, وشرابی اور ٹھنڈا ٹھنڈا چشمے کا پانی پی. اسی لیے عام طور پر لوگ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں. وقری عینا اور اپنی آنکھوں کو تو ٹھنڈی رکھ, یعنی اپنے بچے کو دیکھ اور دیکھ دیکھ کر کے اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کر. لیکن اللہ کب تک جنگل میں بیٹھی رہوں, کب تک یہاں رہوں, گاؤں میں تو جانا ہے, گھر تو جانا ہے, جنگل میں بھی تو جانا ہے, تو آگے کیا ہوگا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اگر کوئی بشر تجھے دیکھ لے وے اور آنے کے بعد وہ پنچاتی پٹیل پوچھے کہ یہ بچہ آیا کہاں سے, تیرے بچے کے بارے میں سوال کرے کہ یہ بچہ آیا کہاں سے, فقولی انی نذرت للرحمن صوما, تو اس کو جواب دے دینا کہ میں نے تو آج رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے. فلن اکلم الیوم انسیا, لہذا آج میں کسی مرد سے بالکل بات نہیں کروں گی. دیکھیے یہ نہ بولنے کا روزہ پچھلی شریعتوں کے اندر تھا, امت محمدیہ کے لیے ایسا روزہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے میں وہ سب باتیں بولے جو سال کے 11 مہینے نہیں بولتے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں نکلتا ہے کہ لوگوں کو رمضان میں روزہ لگے اور ظہر عصر کے بعد کوئی بانگی پہ گرم ہوا, کوئی امام پہ گرم ہوا, کوئی کنجر والی پہ گرم ہوا, اس کا مطلب یہ بھی تھوڑا ہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کوئی روزے کی حالت میں کرے تو روزے کی برکت ختم ہو جائے گی, گالی گلوچ کرے روزے کی برکت ختم ہو جائے گی, روزے کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا. تو امت کو چپ چاپ کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں, لیکن روزے کی حالت میں زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم ضرور موجود ہے. تو ایسا خاموشی والا روزہ پچھلی امتوں کے اندر تھا. بصیرین نے ایک عظیم نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو حضرت مریم نے اپنی زبان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاموشی کی برکت سے ان پر آئے ہوئے الزام کا جواب دینے کے لیے ان کے نو مولود بچے کو زبان عطا فرمائی اور اللہ نے ان کی طرف سے انتظام کر دیا. جو زبان جاری تھی مریم کی وہ بند کر دی, تو ایک غیر جاری زبان بچے کی اللہ نے اس کو تکلم عطا فرما دیا اور وہ زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بول کر کے اپنی والدہ کی طرف سے برات کا اعلان کیا. تو کہا کہ کوئی تم کو پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے تو آج رحمان کے لیے منت مانی روزے کی, اور جو منت ہو وہ منت پوری کرنی ضروری ہوتی ہے. فلنکلم الیوم انسیا, کسی مرد سے بات نہیں کروں گی. کیا مطلب؟ کسی ملائکہ سے بات کرنا ہو تو ہو سکتی ہے, لیکن کسی انسان سے میں بات کروں گی نہیں. اور یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منت مان سکتے ہیں, غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں ہے. نظر تو للرحمن, رحمان کی منت یہ جائز ہے اور غیر اللہ کی منت جائز نہیں ہے. اب یہ جو کہا کہ کوئی پوچھے تو یوں کہنا کہ انی نظر تو للرحمن صوما, تو کیا یہ جملہ منت کے خلاف نہیں ہوگا؟ کوئی پوچھے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا تو اتنا تو کہنے کا نہیں کہ انی نظر تو للرحمن صوما فلنکلم الیوم انسیا, تو کیا یہ جملہ منت کے خلاف نہیں ہوگا؟ تو حضرات مفسرین نے دو احتمال ذکر کیے. بات کہتے کہ یہ جملہ اشارے سے کہنے کے لیے اجازت دی گئی کہ اشارے کے ذریعے سے لائے کے لکھ کر کے بتلا دے رہے, اور بات کہتے ہیں کہ بس اتنا جملہ بولنے کی اجازت ملی کہ کوئی بھی پوچھے تو کہنے کا انی نظر تو للرحمن صوما فلنکلم الیوم انسیا, اتنا جملہ اجازت, باقی اس کے علاوہ کوئی کلام کرنے کی اجازت نہیں. فلنکلم الیوم انسیا, حضرت مریم وہاں پر رہی 40 दिन या एक पूरा दिन या एक थोड़ी देर वहाँ पर रही और उसके बाद हजरत मरियम मेले के अंदर आई। जैसे मेले के अंदर आई ने तो क्या हुआ, हर दौर में ऐसी संख्या की जमात रहते ही है जिनका धंधा ही होता है क्या हुआ, क्यों हुआ, किसके यहाँ हुआ, कब हुआ, ये पंचा की पटेल जमात हर दौर में होती है। और उसे जिला को मिला ली तो उन सब ने आकर के सब जमा हो गए। अतत भी कौमहा, अतत भी कौमहा तहमिलु, हजरत मरियम अतत भी कौमहा तहमिलु, अपने बच्चे को उठा करके अपनी कौम के पास, खानदान के पास लेकर के आई। सब लोग जमा हो गए। कालू या मरियम लकद जीती शैअन फरिया, हे मरियम ये तूफान की चीज लाई कहाँ से, ये शादी से पहले का बच्चा ये तो तूफान, ये तूफान कहाँ से लेकर के तू आई। बाद हजरात ने फरिया का तर्जुमा किया है गजब की चीज, ये गजब की चीज तू कहाँ से लेकर के आई। बाद में फरिया का तर्जुमा अजीम से किए, ये इतनी भारी चीज शादी नहीं हुई और बच्चा लाई कहाँ से। लकद जीती सही अन फरिया, इतनी बड़ी भारी भरकम चीज तू लाई कहाँ से। और सब लोग हसब दस्तूर के नीचे या उसका हारून ए हारून, जैसे भाई की बहन तेरा बाप भी कोई बुरा नहीं था, ये तेरी माँ भी कोई जो है हाउसवाइफ नहीं थी, ले तू ये शादी के बगैर बच्चा लाई कहाँ से, तू कहाँ से ये सब लेकर के आई। अब ये हारून से कम मुराद है। तो इस सिलसिले में बाजे हजरात की राय ये है कि हजरत मरियम का नसब नामा हजरत मूसा अलैहि सलाम के भाई हजरत हारून से मिलता जुलता है, वो उन्हीं के नसब से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो खानदानी निस्बत को बीच में लाकर के लोगों ने इश्काल किया। बाद हजरात कहते हैं कि हजरत मरियम का कोई हकीकी भाई था जो बड़ा नेक साले अल्लाह वाला आदमी था, उसका नाम हारून था, हकीकी भाई, उसकी तरफ निस्बत करके कहा या उसका हारून। मालूम है ये कदीम जमाने का तर्ज है कि कोई नेक साले अच्छे आदमी के खानदान वाले कोई गड़बड़ करे तो लोग उसके नाम से वास्ता देकर के तंज करते, वो मौलवी का बेटा हो के ऐसे धंधे करता है शर्म नहीं आती, आरी का बेटा हो के ये काम करता है शर्म नहीं आती, लोग इस तरह तंज मारते। तो क्या उन लोगों के लिए हलाल है और इनके लिए हराम है, यूँ इसका मतलब ये हुआ। तो ये एक तरीका है पुराने जमाने से कि लोग सालिहीन के नाम से वास्ता देकर के इस तरह इश्काल और फितने खड़े करते हैं। वही बात जो है खानदान के लोगों ने जमा होकर के कही और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पुराने जमाने के अंदर लोग नबियों के नाम पर और गुज़िश्ता अपने खानदान के अच्छे लोगों के नाम पर अपने घरों में औलाद का नाम रखा करते थे और उससे बरकत आती है। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में बहुत मजबूत मौजूद है। घर के अंदर दादा का नाम भी होगा, बाप का नाम भी होगा और सालिहीन के नाम पर नाम रखने का रिवाज अब उसमें कुछ धीमे धीमे कमी आती हुई नजर आ रही है। हालात और दुनिया के फितनों की वजह से लोग नए नाम और स्टार्स के नाम और जो है कीड़ों के नाम मकोड़ों के नाम रखने के अब लोग शौकीन बन रहे हैं। वरना आज तक तो यही आदत थी कि घर में बच्चा हुआ था कि दादा का क्या नाम था वो रख दो ताकि दादा का नाम जिंदा रहे, या कोई नेक आदमी नबियों के नाम पर से नाम रखने का आम रिवाज था। और ये हदीस में भी मौजूद है या उख्त हारून, हारून जैसे नेक और साले और पाकबाज भाई की बहन। मा कान अबू किमरअसौ, इससे एक बात मालूम हुई कि खानदान के असरात घर दूसरे लोगों पर आते हैं खानदानी माहौल के। ये क्या कहना चाहते हैं, अगर तेरा बाप कोई गड़बड़ वाला इंसान होता और तू ऐसी बनती तो कुछ समझ में भी आता, तेरी माँ अगर चालू वालू होती और तेरे अंदर कोई ऐसे असरात आते तो कुछ समझ में भी आता। यहाँ तो न तेरा बाप बिगड़ा हुआ, न तेरी माँ कोई खराब, सब नेक और साले, तेरे बाप हजरत इमरान जैसे, तेरी माँ हजरत हन्ना जैसी, और तू ऐसे पाकबाज घराने में होकर के ये शादी के बगैर बच्चा कहाँ से लाई। तेरे जात के ऊपर गोया खानदान का माहौल नहीं आया, असरात नहीं आए उस पाकी का माहौल के, ये सब लोगों ने सवाल किया। अशारत इलैही, हजरत मरियम ने कुछ जवाब नहीं दिया, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। तो बाद मुफस्सिरीन फरमाते कि बच्चे की तरफ इशारा करने की वजह से लोग गुस्से में आ गए। मरियम एक तो शादी के बगैर बच्चा लाई और अब हमारी मजाक उड़ाती, हमारी गिरती उतारती है कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिए कि इसको पूछो ये कहाँ से आया, तू बोलनी ये कहाँ से आया। फाशारत इलैही, हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, ये गुस्से का कलाम। सब लोग कहने लगे कि जो बच्चा अभी तो गोद में, महदी के दो तर्जुमे गोद भी और घेवारा भी, जो बच्चा अभी गोद में घेवारे में वो कैसे बोलेगा, आज पैदा हुआ या 40 दिन का वो कैसे बोलेगा। ये सब लोग हजरत मरियम के ऊपर नाराज हो गए। हजरत मुफस्सिरीन फरमाते कि जब सब लोग हजरत मरियम पर गुस्से हो रहे थे तो हजरत ईसा अलैहिस सलाम अपनी वालिदा की गोद के अंदर दूध पी रहे, माँ की छाती मुंह के अंदर लेकर के बस उन्होंने अपनी माँ की छाती को छोड़ा और बाईं तरफ जरा सहारा लेकर के ओम की तरफ मुतवज्जे हुए और दाहिने हाथ की उंगली आसमान की तरफ उठाई और बुलंद आवाज से हजरत ईसा अलैहिस सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। قال اني عبد الله, मेरी माँ पे शक करने वालों, मैं तो मेरे अल्लाह का बंदा हूँ। पहले ही सलाम में कह दिया कि मुझे इब्नुल्लाह मत समझना, मुझे इलाह के दर्जे में मत समझना। قال اني عبد الله آتاني الكتاب, अल्लाह ने मुझे इंजील किताब अता फरमाई। क्या मतलब इंजील किताब, अभी तो आज पैदा हुए। तो बाद हजरात ने ये तशरीह की है उसकी कि जब आप अपनी वालिदा के पेट में थे उसी जमाने में तौरात किताब के हाफिज बन गए थे, माँ के पेट ही में तौरात के हाफिज बन गए। और ये होता है, देखो माए बच्चा जब पेट में होता है उस जमाने में कुरान की कसरत से तिलावत करे तो बच्चा उस आवाज को सुनते सुनते कुरान की आयतों को याद कर लेता है। हजरत शेख जकरिया साहब के वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात में है, हजरत जब पैदा हुए 5 पारे के हाफिज थे, इस हाल में वो पैदा हुए थे। और ये क्या चीज है, माए जब हमल के जमाने में कुरान की कसरत से तिलावत करे तो उसकी आवाज सुनते सुनते बच्चों के दिमाग में वो याद हो जाता है। तो ये हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम माँ के पेट में जब थे तो वालिदा हजरत मरियम तौरात पढ़ती होगी तो सुन सुन करके वो तौरात के हाफिज बन गए थे या तौरात उनको इल्का कर दी गई थी। ये है आतानियल किताब का मतलब। और बाद हजरात ये कहते हैं कि बचपन ही के अंदर उनको इंजील किताब दे दी गई थी। तीसरा कौन ये है, इंजील मिलेगी तो मुस्तकबिल में, लेकिन मिलना यकीनी है, इसलिए माजी का तेरा इस्तेमाल किया गया। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। वजअलनी मुबारका, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। अइनमा कुंतु, जहाँ कहीं भी मैं रहूँ बहुत ही बाबरकत रहूँ। और वलदुल जिन्ना कभी बाबरकत नहीं हो सकता आमतौर पर, इल्ला माशाअल्लाह, मैं बहुत बरकत वाला। चुनांचे जब कयामत से पहले दुनिया में तशरीफ लाएंगे तब भी उनकी बरकतें जाहिर होगी। جیسا کہ اس دن تیرے پاس کے آخر میں بتلایا تھا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نماز اور زکات کی تاکید کی ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، معلوم ہے ان کی زندگی لمبی ہونے والی ہے، وبرم بوالدتی، اور میں میری والدہ کا خدمت گزار ہوں، ولن تجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر نافرمان نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلامتی اترے میری پیدائش کے دن، ویوم اموت، میری موت کے دن، ویوم ابعث حیا، اور قیامت کے دن جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اس دن، اس کے اندر عموم مراد ہے، ہمیشہ میرے اوپر سلامتی دے رہے. اور یہ تین خاص موقع ہیں جس میں انسان کو اللہ کی طرف سے سلامتی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پیدائش کا وقت کہ شیطان اس کے اوپر اپنا گندا اثر نہ ڈالے، موت کا وقت کہ شیطان کفریہ کلمہ نہ بلواوے، اور قیامت کا دن کہ شیطان کی جماعت میں شامل نہ ہو. اسی لیے ان تین دنوں کی خاص تخصیص کی گئی. ذالک عیسی ابن مریم، یہ بچہ کون ہے؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس کے اندر یہ لوگ شک کر رہے ہیں. دیکھو پورے قرآن مجید کے اندر کسی عورت کا نام نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام صراحتاً موجود ہے. یہ ان کے خصوصیات کے اندر سے ہے، اور یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ان کی ولادت ہونے والی ہے اماں جان سے، اسی لیے ان کی ماں کا صریح نام قرآن میں آیا تاکہ لوگوں کو ان کے نسب کا پتہ چل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم کی عفت، پاک دامنی اور تقویٰ کے اعزاز میں عورت نے ولتی آسنت کر جہا فنفقنا فیہا من روحی فنفقنا فیہ من روحنا، جس عورت نے اپنے آپ کو عفت سے رکھا، ہم نے اس کے نام کو قرآن کے اندر روشن کر دیا. اسی لیے ان کا نام قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا. باقی کسی نبی کا نام قرآن میں نسبت کے ساتھ نہیں ہے. آپ دیکھو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی نسبت کے ساتھ ان کا نام نہیں آیا. حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، کہیں نسبت کے ساتھ نام نہیں آیا. ایک نبی ممتاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان کا نام نسبت کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت امتیازی ہے ان کی والدہ کی طرف، عیسیٰ ابن مریم، اس لیے نسبت کے ساتھ نام آتا ہے. جی ترجمہ کرو.